यू फील इट ऑन द स्ट्रीट्स, गोवा में अगर आपके पीपल इंटरेक्शंस उनमें कोई फर्क पड़ा या वो तो कोई
फर्क नहीं? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट बट आई डू बिलीव कि मुंबई अटैक्स के बाद देयर वाज अ शिफ्ट इन पीपल्स थिंकिंग. पहले जब आप इंडिया जाते थे तो वो कहते थे जी लाहौर दी लड़की, तो बड़े वो एक्साइटेड होते थे कि कोई कहता था ओ साडा घर इत्थे हुंदा सी, तुहानू याद है, तुहानू पता है. मगर अब जब हम जाते हैं तो यंगर जनरेशन लुक्स एट पाकिस्तान एज जस्ट अ कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स टेररिज्म, एंड दे हैव सीन दैट फ्रॉम देयर लिविंग रूम्स व्हेन द यू नो व्हेन द ताज होटल वाज सीज्ड एंड अदर.
अस्सलाम वालेकुम, टीपी इस्लामाबाद जारी है और अब आपको लोगों को फ़र्क पता चलेगा कि जर्नलिस्ट और मेरे जैसे जो शार्लटन्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्योंकि पूरे नोट्स और सबके साथ तैयारी पूरी है. मुझे डर लग रहा है कि मैं ही ना आज ग्रिल हो जाऊं. मुनीज़ जहांगीर, जर्नलिस्ट, होस्ट और स्पॉटलाइट ऑन आज टीवी हमारे साथ हैं. कैसे हैं आप?
आई एम वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट. मैं इसको बहुत शौक से देखती हूँ और आपका जो आतिफ मियाँ का इंटरव्यू था मुझे बहुत पसंद आया.
नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. मैं इंट्रोडक्शन अभी जब आपके आने से पहले पूछ रहे थे तो मैं किसी को बता रहा था, तो उसमें मैंने बोला आसमा जहांगीर की बेटी है. फिर आई वाज लाइक ये बोलना एक तरह से सही भी है क्योंकि वो आसमा जहांगीर इतनी टावरिंग फिगर हैं कि हाउ कैन यू नॉट एसोसिएट. बट आपकी खुद की अब इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं और अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं और काम हैं. What do you feel about when you know people, sometimes people feel कि यार मेरी अपनी एक association है, मैं सिर्फ आसमा जहांगीर की बेटी नहीं हूँ, but then it's आसमा जहांगीर.
Yeah, I totally agree. I think when she was alive तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, but now that she is no longer there तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. When people say कि ये आसमा जहांगीर की बेटी है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, because मैं अपनी माँ को बड़ा याद करती हूँ.
आपको क्या लगता है क्या एक क्या खो दिया है पाकिस्तान ने, क्या एक वॉइस है या क्या एक स्पेस है जो वो नहीं हुई अब तक फिल्म?
आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ऐसी ख़वातीन आईं जो जब गईं तो वो स्पेस कभी फिल नहीं हुई. आई थिंक बेनज़ीर भुट्टो उनमें से एक थी, आई थिंक मेरी वालदा 100% उनमें से एक थी, और लोग उनको ढूंढते भी हैं. लोग जब कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि आपकी शक्ल उनसे मिलती है या वो उनको ढूंढना चाहते हैं, कई दफ़ा कहते हैं कि ये आसमा जहांगीर की तरह है या ये आसमा जहांगीर हो सकती है मेरे बारे में नहीं और भी लोगों के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि लोग उनको तलाश कर रहे हैं. और इसलिए भी तलाश कर रहे हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो कोई हल नहीं कर रहा है, सच उस तरीके से हल नहीं कर रहा. मेरी वालदा के बहुत सारे फैसेट्स थे आसमा जहांगीर के. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सिर्फ एक वकील नहीं थी, उनका मकसद था कि कैसे उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक लोगों तक लाने हैं, और ज़रिया जो था वो वकालत बना, मगर वो कोई और प्रोफेशन भी हो सकता था. मेरा ख्याल है कि एक चीज़ और मैं सोच ही रही थी कि बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, मगर मेरी वालदा जो थी वो बड़ी मिलनसाज थी, तो उनके कभी फ़ोन जो था वो कभी बंद नहीं होता था, और वो इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझती थी कि अब लोग कहते हैं ना टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड रिलैक्स. शी डिडंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस. उनका फ़ोन सारा वक्त खुला होता था, और रात के 2-2 बजे भी उनको लोग कॉल करते थे तो वो फ़ोन उठा लेती थी. तो एक तो जो उनके अंदर कैपेसिटी थी कि किसी का दर्द समझ लेना, वो मैंने बड़े कम लोगों में देखी है. और दूसरी बात ये थी कि शी न्यू हाउ टू स्ट्रैटेजाइज, शी वॉज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट. और उनको लोगों को इकट्ठा करना आता था, मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को वो इकट्ठा कर लेती थी, और उनको ये भी पता होता था कि फलाने बंदे के घर के अंदर क्या मसला चल रहा है. तो वो तभी हो सकता है जब आप लोगों को बार बार मिलें, जब आप लोगों के साथ बैठें, और जब आप लोगों के साथ एक हमदर्दी रखें. वो जो चीज़ होती है वो या आप में होती है या नहीं होती.
हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं जो प्रिंसिपल बातें करते हैं, बातें तो ठीक लगती हैं, स्पेशली लॉयर्स को लीगल जार्गन इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले सकते हैं, तो ऐसा लगता है क्लैरिटी है. बट विद आसमा जहांगीर वी ऑलवेज हैड क्लैरिटी ऑफ थॉट, विच आई एम अज्यूमिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम क्लैरिटी ऑफ कन्विक्शन. तो ये कैसे आती थी कि वो पार्टिजनशिप में नहीं होती थी इन्वॉल्व, उनका नॉर्थ स्टार हमेशा प्रिंसिपल रहता था या ह्यूमन राइट्स रहते थे, जिसकी वजह से शी इज़ नॉट समबडी दैट यू वुड से कि अब जिस तरह कोई भी लॉयर अच्छा ये तो यूती है, ये तो पटवारी है, ये तो जे आला है. कहने को तो चले काफ़ी चीज़ें कही गई हैं आसमा जहांगीर के बारे में भी, लेकिन
काफ़ी कुछ
बट नाउ आई डाउट एनीबडी कैन से दैट कंसिडरिंग हर करियर. सो वॉट वॉज इट अबाउट हर विच वो क्लैरिटी ऑफ थाट और क्लैरिटी ऑफ कन्विक्शन हमें नज़र भी आता था?
आई थिंक दैट क्लैरिटी ऑफ थाट केम फ्राम हर फादर. हर फादर वॉज अ पॉलिटिशियन एंड वो हमेशा अपोजिशन में ही रहे.
माइक थोड़ा सा करीब कर लें. जी जी जी
her, I think that clarity of thought came from her father. Her father was a politician, Malik Muslim Ram League Jilani.
अवामी मुस्लिम लीग बांग्लादेश वाली की वेस्ट पाकिस्तान में
जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, उनके साथ मुंसलिक थे और हमेशा ऑपोजिशन में ही रहे. तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि एक अगर मुल्क हो जहाँ पे एक ही ऑपोजिशन का बंदा हो तो वो ज़रूर उमर गुलाम जिलानी ही होगा. तो उनकी एक तस्वीर भी बड़ी जो है उस वक्त मशहूर हुई थी कि वो अकेले जो हैं 1971 की वॉर के बाद जो है वो एक प्लैक कार्ड लेके जो है इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सूट और टाई पहन के, ही वाज ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, वो पहन के जो है वो खड़े रहते थे एहतजाजन. तो उनका जो असूल था वो था बुनियादी इंसानी हकूक, और वही एक बैरोमीटर था जो उन्होंने मेरी वालदा को समझाया. एक तरह से विरासत में उनको वो एक थिंकिंग मिली, एंड मेरा ख़्याल है कि उसकी बुनियाद जो थी वो मेरी वालदा ने इस वजह से रखी क्योंकि उनके वालिद जो थे उनकी ये थिंकिंग थी, उनकी वालदा की भी ये थिंकिंग थी. एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट आई ऑल्सो थिंक माई फादर कॉन्ट्रीब्यूटेड. आई थिंक ही वॉज अ वेरी फेयर पर्सन. और हमारे घर में कभी तफरीक की कोई बात नहीं होती थी, लिसानी बुनियादों पर कभी किसी के बारे में बात ही नहीं होती थी कि कोई हमारे से अलग है बेस्ड ऑन रिलीजन, सेक्स, क्रीड, कभी इस तरह की बात ही नहीं होती थी. तो मेरा ये ख्याल है कि इट वॉज़ दैट बेसिक फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, दैट ड्रोव हर. एंड शी ऑलवेज बिलीव दैट सरहदें जो होती हैं आप उसके ज़रिए जो है आप लोगों को कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप लोगों के हकूक नहीं ले सकते. और हमेशा कहती थी कि कल्चर, ये क्या कल्चर है कि जी कल्चर है तो ख़वातीन को आपने ऑनर किलिंग कर दी, ये आपका कल्चर है, ये किस किस्म का कल्चर है. और वो ये समझती थी कि कल्चर के ऊपर आप बेस करके अपनी जो है वो दादागिरी ना करें, जिस तरह के वेस्ट ने एक तरीके से ये बात बोली कि इट इज़ योर कल्चर एंड देयरफॉर यू नो. एंड सो शी सेड नहीं, बुनियादी इंसानी हकूक तो हर इंसान का हक है, चाहे वो काला है, गोरा है, औरत है, मर्द है, अफगानिस्तान में रहता है या अमेरिका में रहता है, वो बुनियाद है. उसके बाद आप जो कल्चर लाएँ सो लाएँ, मगर वो ये नहीं हो सकता कि आपका कल्चर ये है कि मैं अगले की जो राइट्स है उसको यूसर्प कर जाऊँ.
इसमें अभी जब मैंने कहा कि ये बातें नहीं कही जा सकती तो आपने कहा है, हाउ डू यू फील नाउ कि उस वक्त जो नाकदीन भी थे जो बातें भी करते थे वो भी अब वही बातें कर रहे हैं, वही अस्मा जहांगीर की पुरानी क्लिप्स वायरल हो रही है. डू यू लाइक स्माइल एट नाइट व्हेन यू सी दिस हैपनिंग?
वेरी मच सो, बिकॉज नॉट जस्ट दैट, आई थिंक दैट सो मेनी ऑफ द थिंग्स शी सेड टू पॉलिटिशियंस कि ये आप मत करें. मेमो केस के अंदर भी उन्होंने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को कि किसी दिन जो पटिशनर है वो अपने आप को उसी जगह पाएगा जिसके ख़िलाफ़ उसने आज जो है एहतजाज किया है. तो मेरा ख़्याल है कि इवन दैट वे कि जो उनकी पेशन गोइयाँ थीं, चूँकि वो देखिए वो सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, अपनी वकालत के ज़रिए बहुत सारे केसेस उन्होंने मुफ्त किए. और जब आप मुफ्त केसेस करते हैं ना तो तब आपके पास हर किस्म का केस आता, और हर बंदा जिसको वो कहती थी कि बेटा ये तो तिनके का सहारा है, मैं तो तिनके का सहारा हूँ, जो भी गिर रहा होता था ना वो आखिर में मेरी वालदा के पास ज़रूर आता था. सो शी न्यू द प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस्ड एंड एट अ वेरी इन डेप्थ लेवल शी हैड डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑन दिस थिंग. मगर जो आपने सवाल किया वो अब तो मुझे वो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगते हैं ट्विटर पर और कहते हैं कि हमने बड़ी गलती कर दी, मगर उन्होंने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया. एक दफ़ा मुझे अभी भी याद है कि एक टीवी टॉक शो बकायदा उनके ख़िलाफ़ हो रहा था, तो मैं उनको फ़ोन करी जा रही थी कि भी आप देखें तो सही उस टीवी पे आपके ख़िलाफ़ एक टीवी टॉक शो हो रहा है. तो शी सेड तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो? मैंने कहा वो टॉक शो आपके ख़िलाफ़ हो रहा है. कहती भाई मैं रोज़ अब इन लोगों की बातें सुनना शुरू कर दूँ तो मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, छोड़ो मुझे परे. फिर जब मैं घर वापस आई तो हमारी अक्सर लेट इन टू द नाइट कॉन्वर्सेशन होती थी, तो कहती हाँ अब बताओ तुम क्यों मुझे फ़ोन करी थी? मैंने कहा वो तो आपके ख़िलाफ़ बातें करते थे. बेटा ये तो रोज़ करते हैं, इसमें क्या है भाई, मैं एक इंपॉर्टेंट केस कर रही थी, उसके अंदर ये मामला फंसा हुआ था, तो तुम मुझे फ़ोन करके वो जो कहने दें उनको कहने दो, और उनके जो हैंडलर्स हैं मैं उनको कहूँगी, इनको नहीं कहूँगी. सो शी डिडंट केयर, एक्चुअली डिडंट रियली केयर.
क्या आपको लगता है, आपने भी मेमो गेट का जिक्र किया, इवन फ्रॉम 10-12 साल जो स्पेस अवेलेबल थी टीवी पे बातें कहने की, लोगों को डफर भी कहा जा सकता था, ऑन एयर भी जा सकता था, उसके करीब करीब भी अब स्पेस नहीं अवेलेबल
है. भी है और नहीं भी है. आई अग्री विद यू कि स्पेस बहुत श्रिंक हुई है, मगर इसका जो गहरा रिश्ता है वो जमहूरियत से है। आई रिमेंबर मैंने अपना करियर शुरू किया जनरल मुशर्रफ के दौर में, और तब मैं उस वक्त उन्होंने मैंने प्रोड्यूस किया था एक दिन जियो के साथ, एंड
लेजेंडरी सुहेल वढाइच के साथ,
लेजेंडरी सुहेल वढाइच,
वाकई लेजेंड।
और जब मैं एडिट करके निकली तो वहाँ पे सुहेल वढाइच साहब ने ये कहा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था एक जमहूरी पाकिस्तान, वो शो चला ही नहीं, हम बैठे रह गए और एक कोई रिपीट चल गया। जब मैंने पूछा कि क्यों ये नहीं चला ये शो, तो उन्होंने कहा जी ये लाइन नहीं जा सकती, जनरल मुशर्रफ का दौर है। मुझे आज भी याद है जब अकबर बुगती साहब को कत्ल कर दिया गया था, तो मैं बलूचिस्तान में थी जब उनका गायबाना नमाज जनाजा किया गया, और आसमान नज़र नहीं आ रहा था, इतना धुआँ था, पूरी सरियाब रोड जो थी उसके ऊपर आग लगा दी गई थी। उस वक्त मैंने एक बहुत मशहूर एंकर को फ़ोन किया था, और वो जाने जाते थे कि वो सेंसरशिप के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। मैंने कहा आज कम अज़ कम टिकट तो चला दें, नहीं तो बलोच हमें माफ़ नहीं करेंगे, मगर नहीं चला वो टिकट। तो वो दौर भी हमने देखा। फिर आए बेनज़ीर साहिबा का दौर, आसिफ जरदारी साहब का दौर, और तब हमने देखा कि किस तरह मीडिया को आज़ादियाँ मिली। उसके अंदर मैंने चमन से जाके भी रिपोर्टिंग की, वहाँ पे जो स्मगलिंग रैकेट थी, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन वहाँ पे किया। उस वक्त एफसीबी इन्वॉल्व थी, सब इन्वॉल्व थे, तो वो चल तो गया, मगर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बंद हो गया, 6 महीने बंद रहा, हमारा जो ब्यूरो था उसको वहाँ से बेदखल कर दिया गया। तो इस तरह का भी वक्त देखा। जब मियां नवाज शरीफ साहब आए तब भी हालात कुछ बेहतर थे, मगर जब धरने शुरू हो गए और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक तरीके से दीवार से लगाया गया, तब मीडिया के ऊपर कदगने ज़्यादा शुरू हो गई थी। सो हमने ये देखा है कि गहरा रिश्ता है मेन स्ट्रीम मीडिया का और उस वक्त जो हुकूमत के अंदर हो रहा है। हाइब्रिड के अंदर तो आप वो आपके पास वो रूम नहीं हो सकता, वो स्पेस नहीं हो सकती जो होती है इन अ रियल डेमोक्रेसी और इन सम वॉट ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट्स फ्लेजिंग इट्स मसल्स।
मुझसे कल कोई पूछ रहे थे कि जो नए पॉडकास्टर्स आ रहे हैं इनको आप कहना चाहेंगे कि यार ये बातें मत करो तो फंस जाओगे, मैं कौन होता हूँ, इफ़ दे हैव कन्विक्शन दे हैव बिलीव दे कैन से इट, बट मे बी देयर इज़ अ वे टू से एवरीथिंग। एक न्यूज़ एंकर है, उन्होंने मुझे बताया कि प्रियम कभी कभी मीटिंग करते थे, अच्छा कहना है पर किस तरह कहना है, क्या कहना है। तो क्या ये टैक्टिक्स हैं कि इन बिटवीन द लाइंस बातें हो जाएं और जो थोड़ा भी समझदार है उसको समझ में आ जाए?
अगर ये हम सब कुछ यहाँ पे बता देंगे तो फिर तो हमारी बैंड बजाएंगे वो जब हम ऑन एयर आएंगे। हमारे बड़े तरीके होते हैं अपनी बात करने के और कैमोफ्लाज करने के। मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, जिस तरह मिसिंग पर्सन्स पे हमने शो किया है, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे किया है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ऊपर किया है, उसको कैसे करना है, किस तरह अंदर घुसाना है, वो फिर अब कुछ चीज़ें आप रहने भी दें ना, आप पूछें
ट्रेड सीक्रेट चाहिए KFC की रेसिपी की तरह है कि किस तरह कहना है क्या कहना है। बट अब तो मुझे लोग कह रहे हैं कि किसको बुलाना है उस पर भी राय आती है, किसको बुलाया जा सकता है किसको नहीं बुलाया जा सकता,
तो जब आती है। और ये भी आती है किसको किसके साथ बुलाना है, ये जोड़ियां भी बन रही हैं अब।
अच्छा रिश्ता मेकिंग भी होती है,
वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है।
हाँ पारा मैच मेकिंग रिश्ता आंटी भी चल रही है यहाँ पर। बट व्हाट्स द व्हाट आर दे टू गेन फ्रॉम हैविंग द जोड़ी?
बिकॉज दे फील के वो जो है इसको अच्छी तरह काउंटरैक्ट कर सकता है।
अच्छा
तो ये भी है। और कई दफ़ा ये भी पता नहीं चलता कि इनकी, मैंने ऐसा दौर भी देखा है कि एक ज़माना था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर वो अपने बाथरूम से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो टीवी चैनल्स जो थे वो कट नहीं करते थे, घंटों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली जाती थी। कई दफ़ा वो ऐसे भी कॉल करते थे इन द मिडल ऑफ द नाइट, उनकी आवाज़ भी कुछ ठीक नहीं थी, मगर हम वो सब कुछ दिखाते थे। फिर व्हेन ही फेल आउट ऑफ दी विद द एस्टैब्लिशमेंट, तो कई टीवी चैनल्स को पता था, कई टीवी चैनल्स को नहीं पता था, उन्होंने उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाई। और जब उन्होंने जो है कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जो कुछ इदारों को नापसंद थे, तो उन चैनल्स के ऊपर भी सख्ती आई। उन बेचारों को क्या पता था कि जी अब जो आपके चहीते हैं वो नहीं रहे आपके चहीते। तो ये भी चीज़ें हमने देखी हैं। और टीवी चैनल्स को भी कई दफ़ा टाइम लगता है। एक टाइम था कुछ जनरल, साबिक जनरल, उनको हमें कहा जाता था इनको ज़रूर ले, इनको ज़रूर ले। आज वही साबिक जनरल बैंड
ए से नाम शुरू होता
बड़े बड़े नाम हैं
इसमें। जो लोग सुन रहे हैं जो जर्नलिज्म की तरफ आना चाहते हैं, जो मीडिया की तरफ आना चाहते हैं, जिस तरह के हाल हैं, वो देखते हैं बोलते हैं इसमें आने की क्या फ़ायदा है। मतलब अगर मुझसे भी कोई मेन स्ट्रीम टी वी की बात करे, आई बी लाइक मैं पागल हूँ, मैं मेन स्ट्रीम टी वी की तरफ क्यों आऊँ इस वक्त, द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट। वो बुजू से या somebody who's from within the system, कि यार अच्छा ठीक है सिस्टम ख़राब है, चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें मुश्किल हैं, पर अगर इसके अंदर रहकर मैं कुछ यहाँ से बेहतरी लाकर चीज़ें बेहतर कर सकती हूँ, ए क्या किस तरह आपने वो पाथ मनूवर किया, और बी यंग लोग जो आना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे?
आई थिंक कि मेन स्ट्रीम जो है, देखिए इधर यू आर प्रीचिंग टू द क्वायर और यू देन डिसाइड टू गो इन टू द मेन स्ट्रीम एंड ट्राई एंड चेंज माइंड एंड चेंज ओपिनियंस एंड बिल्ड एन ओपिनियन, ये भी तो हो सकता है ना। मैं समझती हूँ कि मेन स्ट्रीम में जहाँ तक आपको जगह मिले आप वहाँ पे रहें। जाहिर है अगर बिल्कुल ही आपके लिए चीज़ें बंद हो जाएं और आपको इतना भी आज़ादी ना हो कि आप पूरी तरीके से अपनी बात भी कर सके, तो फिर तो वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर जहाँ आपको जगह मिल रही है एंड एज़ फार एज़ यू कैन पुश द एनवेलोप, मैं समझती हूँ मेन स्ट्रीम में प्रोग्रेसिव आवाज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत। और मैं ये भी समझती हूँ कि हमारी मेन स्ट्रीम में हमारे ज़्यादातर जो एंकर्स रहे हैं वो मसले मसाइल को अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एंकर आपको ये कहेगा जो एक ऑफिशियल पोजीशन है कि जी जो लापता अफराद हैं वो खुद चले जाते हैं अफगानिस्तान लड़ने के लिए फिर वापस आ जाते हैं। सबको पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान में आखिरकार क्या हो रहा है। अब क्या सब इसके ऊपर टॉक शोज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मगर क्या वो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं? वो करना चाहते हैं और वो दिखाना भी चाहते हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के ऊपर भी, इसी तरह आप देख लें फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर भी, इसी तरह आप देख लें जमहूरियत के ऊपर भी। क्या हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पीटीआई के साथ, किस तरीके से उनको लाया जाता है स्टूडियोज़ के अंदर? ये सब, ये बात सबको पता है। और मैं समझती हूँ कि मेरे लिहाज से जो मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं, ठीक है कई हैं जो आप उनके पर तंकीद कर सकते हैं, मगर बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का मीडिया, अगर मैं हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ देखूं, चूँकि मैंने उधर भी काम किया है, बाय एंड लार्ज पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है और पुश बैक किया है काफ़ी हद तक।
अगला वीज़ा तो नहीं लग रहा आपका इस कमेंट के बाद इसमें
जो तो वैसे ही नहीं दे रहे वीज़ा तो क्या करें?
अभी तो आई हैं आप, अभी क्या 2-3 महीने पहले वहीं गोवा में नहीं दिया?
वो तो दे अलाउड ना, दे अलाउड द पाकिस्तानी मीडिया टू गो एंड कवर दिस बिग इवेंट। इट वाज अ वेरी बिग इवेंट फॉर पाकिस्तान आल्सो, बट अभी तो वीज़ा नहीं दे रहे किसी को भी, खास नहीं दे रहे।
इस रेजिलियंस का जो आप जिक्र कर रही हैं, इसमें बैटल्स पिक एंड चूज़ करना भी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी शाज़िब ख़ानज़ादा को काफ़ी तनकीद हुई कि यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि अगर ये जो टैबलॉइड ट्रैश तरह की बातें हो रही हैं करवाई जा रही हैं, बिठाया जा रहा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एंड आई आर्ग्यू कि यार इफ़ ही हैड अ गन टू हिज हेड, के करना तो है, अगर करना तो है वो वाली चीज़ हम साइड पे रख दें, तो जो उसने किया उससे बेहतर वो नहीं कर सकता था। उसने अच्छा खासा ग्रिल किया, सो
आई थिंक अच्छा खासा ग्रिल किया। अगर कोई वो इंटरव्यू देख रहा हो तो आई रिमेंबर, मैं बहुत सारी, हम लोग ऑफिस में ही बैठे हुए थे, बहुत सारी खवातीन जर्नलिस्ट मेरे साथ थी, और उन सब का ये ओपिनियन था कि अगर एक आदमी अपनी साबका बीवी के बारे में इस तरह बात कर सकता है, मीन दे डिडंट हैव अ गुड ओपिनियन। सो आई डोंट थिंक दैट इंटरव्यू, इफ इट वाज, व्हिच आई डाउट दैट इट वाज प्लांटेड।
यू डाउट दैट इट वाज प्लांटेड?
आई हैव माय डाउट्स, यस आई हैव माय डाउट्स, आई डू हैव माय डाउट्स, बिकॉज दे हैव बीन वेरी क्लियर दैट इट वाज नॉट प्लांटेड। उनका ये मौकफ रहा है कि जी हम ये इंटरव्यू प्लांट नहीं किया गया था, और हम काफ़ी अरसे से जो है इससे रब्ता कर रहे थे खाबर मानिका से, और हम, वो हमारे से बात भी कर रहा था और हमारे प्रोड्यूसर से इन टच भी था, तो दैट हैज़ बीन देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई डू ऑल्सो बिलीव दैट शाहज़ेब की जो अप्रोच रही है टूवर्ड्स वेरी बिग इशूज़ काफ़ी फेयर और बैलेंस रही है, सो आई हैव माई डाउट्स।
वॉज खाबर मानिका मिसिंग बिफोर दैट इंटरव्यू?
यस।
देन वाई डू हैव योर डाउट्स? एक बंदा मिसिंग है वो फिर बाजियाब ऑन एयर होता है, जिस तरह आदिल शाहज़ेब के शो पे भी हुए थे, उस्मान वीर के हुए थे मेरे ख्याल से,
मगर अपने घर से हुआ है ना, मतलब अपने घर पे इंटरव्यू दे रहा था। देखिए
इंसान मिसिंग है उसके बाद ऑन एयर है,
हाँ,
तो वन शुड डाउट वेदर इट्स नॉट प्लांटेड, द डाउट शुड बी द अदर वे।
देखिए उसने इंटरव्यू तो देना था ना उसके बाद, दैट वॉज क्लियर कि उसने इंटरव्यू देना था, क्या वो स्पेसिफिक इंटरव्यू उसकी गनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के दिया गया, आई डोंट नो. देखिए, फॉर समबडी टू बी ब्रॉट इन टू द स्टूडियो इज़ वेरी डिफरेंट देन समबडी टू बी लेट गो एंड देन दे गिव एन इंटरव्यू. देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. आई थिंक वी हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो.
आपकी क्या पोजिशन है कि अगर ले आए हैं, लेट्स से आप मुनीफ फारूक हैं, मुनीफ फारूक को शुरू में रिपोर्ट हुआ कि शेख रशीद को दो थप्पड़े मार के बिठाया गया था, बाद में कहा गया जी झूठी खबर है, कोई थप्पड़े नहीं पड़ी थी. शेख साहब ने बोला मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ. दो मिनट बाद में बोला जिसने भी मेरे पर तशद्दुद किया मैंने माफ़ किया था. तो जब हुआ ही नहीं तो माफ़ कैसे कर दिया आपने? व्हाट्स योर पोजीशन ऑफ व्हाट शुड जर्नलिस्ट डू अगर कुछ पेड़े मार के बिठा दिया सामने?
आई वुड नॉट डू द इंटरव्यू
एट द रिस्क ऑफ योर करियर.
नो, आई वुड जस्ट नॉट डू द इंटरव्यू एंड आई डोंट थिंक कि मेरे सामने कोई ऐसा बंदा भी वो लेके आएंगे. उनको अंदाजा होता है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा.
रियली?
आई थिंक सो.
इज इट ऑल्सो कि कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कोर्ट भी करते हैं कि यार ये एक्सक्लूसिव मुझे मिल जाए?
देखिए, आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज माई कॉलीग्स. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन. ये एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है और बाहर से देख के लोग कहते हैं कि जी जर्नलिस्ट ने ये किया वो किया, मगर मेरा ख्याल है कि मेन स्ट्रीम में रह के पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जर्नलिज्म करना, जहाँ हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है हामिद मीर साहब की, कि जब उन्होंने मिसिंग पर्सन के ऊपर केस शोज़ किए तो उसके नतीजे में उनके साथ क्या हुआ, फिर एक पूरे चैनल को कितनी देर तक, नॉट मंथ्स, ईयर्स तक, सालों तक उनको सफ़र करना पड़ा. सो यहाँ पे एक रिजिलियंस रही है एंड आई अप्रिशिएट दैट अबाउट माय कॉलीग्स, कि एक रिजिलियंस उन्होंने दी है. ठीक है, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छी बुरी प्रैक्टिसेस होती हैं, मगर उसका तरीका ये है कि हम इंटरनली इस चीज़ को ठीक करें. अब आप ये भी तो देखें ना, इस चीज़ पर तो कोई बात नहीं करता. जो मीडिया ओनर्स हैं वो कौन है?
सेठ.
नहीं, सिर्फ सेठ नहीं है.
और कौन है?
सिर्फ सेठ नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स भी आए हैं. देखिए, एक सेठ होता है, नहीं, एक सेठ होता है जिसको जो न्यूज़पेपर पढ़ता है या टीवी चैनल्स देखता है या मुंसलिक है जर्नलिज्म से. एक सेठ होता है जिसने कभी भी ना न्यूज़पेपर के अंदर उसका कोई दिलचस्पी है ना कुछ, उसने एक मकसद के लिए टीवी चैनल खोला हुआ है और वो अपना एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट है. तो वो जो जर्नलिज्म होगी और इस सेठ की जर्नलिज्म में फ़र्क तो है ना. फिर तो आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है. बाकी मुल्कों में क्या ऐसा है? क्या न्यूज़पेपर ओनर्स जो हैं वो तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या इस तरह के हैं? नज़रियाती लोग भी हैं. आप इंडिया में ही देख लें, नज़रियाती लोगों ने नहीं वहाँ पर टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स चलाए. अब वहाँ पर भी हॉस्टाइल टेक ओवर्स हो रहे हैं, मगर क्यों हो रहे हैं हॉस्टाइल टेक ओवर्स? और उन लोगों वो लोग हॉस्टाइल टेक ओवर्स कर रहे हैं जिनकी आइडियोलॉजी उस तरीके की है ही नहीं और हो सकती भी नहीं है. सो दे डोंट अंडरस्टैंड द न्यूज़, दे डोंट अंडरस्टैंड द इशूज़ ऑफ द कंट्री. सो मेरा ख्याल है कि वी आर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजिशन नाउ इन द मेन स्ट्रीम, वेयर इफ़ वी कंटिन्यू टू हैव द मेन स्ट्रीम इन द शेप एंड फॉर्म इट इज़, वी विल बी वेरी लकी बिकॉज एवरी थिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट अस. स्ट्रक्चर भी हमारे खिलाफ है, सोशल मीडिया की एक आप समझ लें एक पॉपुलैरिटी सामने खड़ी हो गई है. तीसरे नंबर के ऊपर लुक एट द फाइनेंसेस. गवर्नमेंट जो है हमारा ज़्यादातर तो एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो गवर्नमेंट से आता है. तो जब गवर्नमेंट को एक चैनल पसंद नहीं आएगा वो दूसरे चैनल को दे देंगे. और वो पुराने चैनल्स को क्यों देंगे? इसलिए चूँकि जो नए चैनल आए हैं वो तो उनकी सारी बात मानने को तैयार है और जो नए प्रॉपर्टी डीलर्स आए हैं उनको शायद उनकी एडवर्टाइजिंग मनी की ज़रूरत भी नहीं है. सो मेरा ख्याल है कि आप उस स्ट्रक्चर को देखें ना. आप ये तो नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर मैंने तुम्हारे खिलाफ बना दिया मगर इसके अंदर से अब तुम जो हो रूबरू होके निकल आओ.
आई गेस इतना ब्लैक एंड वाइट दुनिया भर में भी नहीं है. रूपर्ट मर्डॉक हैं, उनके कितने चैनल्स हैं, सब्सिडरीज हैं, वो अगर आप बिहाइंड द फसाद देखें तो आपको पता चलता है. अच्छा, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन बहुत सारे हैं बट स्पेस बन जाती है इंडिपेंडेंट न्यूज़ की भी, वेदर दैट बी इंडिया, वेदर दैट बी अमेरिका, इवन पाकिस्तान में जो रिसेंटली
हुआ है. एडिटर्स तो हैं यहाँ पे, तो एडिटर्स भी आपने ख़त्म कर दिए. कहाँ है आपका एडिटर? किस न्यूज़ रूम में रह गया? ये भी तो देखें ना. एट लीस्ट दे आर फॉलोइंग व्हाट शुड लुक लाइक अ न्यूज़ रूम सेटअप, बट यू आर नॉट रिपोर्टिंग स्ट्रेट टू द सेठ कि वो खबर निकाल दो वो खबर डाल दो. आई मीन ये तो नहीं हो रहा ना वहाँ पे. तो आपको कोई तो कायदे ज़वाबित फॉलो करने होंगे ना. यहाँ पे तो ऐसा नहीं है.
अभी जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है कि गोली रख के चलो बेटा चैनल भेज दो, चलो बेटा चैनल खरीद लो, अच्छा ठीक है मलिक रियाज खरीद लो, अच्छा नहीं नहीं अब तुमने नहीं खरीदना, अब ये डील ख़त्म कर दो, अब डेवू वाले खरीदेंगे, इस तरह अब जब हुआ है has it made the situation even worse?
I think that in any society where the establishment is involved in every profession, in every space, वो ख़राब ही होगा, वो कहीं सही नहीं चल सकता, बिकॉज यू आर प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम डूइंग वॉट दे डू बेस्ट एंड यू आर प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम डूइंग देयर जॉब्स एंड दैट इज़ वॉट हैज़ हैपन्ड इन पाकिस्तान. यहाँ पे सियासतदान जो हैं वो सियासत नहीं कर सकते, बाकी सब कर रहे होते हैं. सिमिलरली जर्नलिज्म को कहा जाता है, जर्नलिस्ट को कहा जाता है आप जर्नलिज्म मत करें, तो फिर हम क्या करें? हम स्टेटमेंट जर्नलिज्म ही कर रहे हैं ना. मुझे बताइए कि तुर्बत में क्या हो रहा है, इज़न दैट एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी? क्यों नहीं हम कवर कर सकते? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. फिर आप देखें कि बाकी इलाकों में क्या हो रहा है, लंडी कोतल में क्या हो रहा है, आप उधर रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उधर रिपोर्ट नहीं कर सकते. गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकते. तो फिर हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? हम स्टेटमेंट जर्नलिज्म तक ही रिड्यूस हो गए हैं ना. और जो पावर कॉरिडोर्स में हो रहा है वो भी हम सही तरीके से नहीं दिखा सकते. यहाँ तक कि हम इमरान खान साहब का भी नाम कई टीवी चैनल्स नहीं लेते, उनको कहा गया है कि उसका नाम नहीं लें.
आई डोंट नो व्हाई दे कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. आपने जो रिपोर्टर्स की बात की, हम जब जर्नलिस्ट का कंसेप्शन होता है हमारे दिमाग में वो हामिद मीर आता है या शाज़िब खान ज़्यादा आता है, बट जो जर्नलिज्म की बैकबोन है वो रिपोर्टर्स हैं, जिनको ना सैलरी अच्छी मिलती है, जिनकी लाशें मिलती हैं, जिनके पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है. वॉट कैन तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी डू टू स्ट्रेंथन देम? क्योंकि हामिद मीर चले ऑफ एयर हो जाए तो एक प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर एक बलोच रिपोर्टर फ्रंट लाइन पर गायब हो जाए तो वो, जिस तरह रफीउल्लाह काकर साहब पाकिस्तान प्रॉपर बोलते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर में तो जर्नलिस्ट को फ़र्क भी नहीं पड़ता.
मेरा ख्याल है ये आपकी तंकीद कहीं किसी हद तक ठीक है, मगर एक वक्त ऐसा आया था जिस तरह इरशाद मस्तोई, शायद आप जानते हो, बलूचिस्तान के क्वेटा के बड़े जाने माने सहाफ़ी थे, उनको उनके दफ्तर में आके उनको गोलियां मार दी गई थी. अभी तक उनके कातिल जो हैं वो नहीं मिले, अभी तक हमें नहीं पता कि उस केस के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ. हमारे बलोच जर्नलिस्ट ख़ास तौर पे वनरेबल होते हैं, फिर हमें यहाँ तक फ़ोन किया जाता है, ख़ास तौर पर साबिक फाटा के इलाकों के अंदर से हमें कहा जाता है कि जी हमें स्टोरी करने ना भेजें, अगर हम करेंगे तो या हमें तालिबान मार देंगे या हमें इस्टेब्लिशमेंट उठा के ले जाएगी. तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू सेंड देम इन दोज एरियाज़, और हम कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से हम ये ख़बर जो है ये नाज़रीन तक पहुंचाएं. बट द थिंग इज़ के यू आर राइट कि वो जो एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो नहीं है अभी जर्नलिस्ट को. पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ख़ास तौर पर जब नासिर जैदी साहब सेक्रेटरी जनरल थे, तो मेरा ख़्याल है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से बात की, फिर एक बिल भी पास किया गया. मगर वो कमीशन जो है जिसके तहत जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन मिलनी थी वो कभी फाल ही नहीं हुआ. वो बिल तो पास हो गया मगर वो कमीशन कभी फाल ही नहीं हुआ. तो जब तक वो कमीशन फाल नहीं होगा तो मैं समझती हूँ तब तक जर्नलिस्ट जो हैं वो वनरेबल ही रहेंगे. मेन चीज़ है कि हमारे पास कवानीन हैं मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो वनरेबल रहेंगे. दूसरी तरफ मैं ये भी देखती हूँ कि जर्नलिस्ट बॉडी इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज बॉडी. ऐसे नहीं है कि दे आर डिसऑर्गेनाइज बॉडी, दे आर एन ऑर्गेनाइज बॉडी. मगर जहाँ जहाँ रियासत जो है वो उस अपने टेंटिकल्स फैलाती है और कहती है कि जी ये नो गो एरियाज़ हैं या ये नो गो टॉपिक्स हैं, वहाँ वहाँ जर्नलिस्ट के लिए ख़तरा बढ़ता रहता.
अभी हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर इलहान नियाज़ के साथ, तो उन्होंने बोला कि ये जो विलिंग कोलैबोरेटर्स मिल जाते हैं सियासत में एस्टेब्लिशमेंट को, उसकी वजह से पॉलिटिकल क्लास इमर्ज ही नहीं हो सकती. क्योंकि आज नवाज़ शरीफ को गिराना है तो इमरान खान बोलते हैं सर मैं हूँ ना, इमरान खान को गिराना है तो नवाज़ शरीफ बोलते हैं साढ़े लिए कोई हुक्म, ये वापस ही आते रहते हैं. डोंट यू थिंक दैट्स ऑल्सो एप्लीकेबल? हमने भी जुडिशरी में भी देखा कि पोलिटिकल डिवाइड पार्टीजन बेसिस पे नुमाया ही हो गया. तो ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी ये नहीं है कि अगर किसी जर्नलिस्ट को हटा देते हैं तो रादर देन ऑल जर्नलिस्ट टेकिंग अ स्टैंड, अदर पीपल आर लाइक साढ़े लिए कोई हुक्म, मैं वापस ऑन एयर आ जाऊँगा, मैं वापस शो कर लूँगा.
है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मगर इसको अच्छा नहीं समझा जाता. और मेरा ख्याल है कि एक सिंपथी बन जाती है उस सहाफ़ी के लिए जिसको ऑफेयर किया जाता है, एंड इट्स कैरिड विद लाइक अ बैज ऑफ रियल ऑनर, आई हैव बीन पुट ऑफेयर. पाकिस्तान में एक रेजिस्टेंस की हिस्ट्री रही है. आप हमारे जर्नलिस्ट को देखें, नासिर जैदी साहब को देख लीजिए, निसार उस्मानी साहब को देख लीजिए, बरना साहब को देख लीजिए, एक रेजिस्टेंस रही है और वही अच्छा सहाफ़ी रहा है जिसने आमरियत के खिलाफ खड़ा हुआ है। नासिर जैदी साहब को तो कोड़े भी पड़े हैं जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। तो जो हमें सिखाया गया जब हम इस फील्ड के अंदर आए कि आप जब खड़े हो जाएंगे और सच बोलेंगे तब आप सही सहाफ़त कर रहे होंगे, तो जो कल्चर है इस मुल्क का, द कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, वो वेरी मच स्टिल कंसिडर्ड टू बी इन गुड प्रैक्टिस। और जो सहाफ़ी अब करीब पाया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं और अच्छी बातें नहीं होती हैं, और इस चीज़ को बुरा भी समझा जाता है। तो मैं समझती हूँ अभी तक कम अज़ कम वो शर्म और हया जो है वो बरकरार है।
बट आप ये एक स्पेसिफिक बबल की बात नहीं कर रही हैं, या जो इस्लामाबाद में कोई एजुकेटेड तबका है, जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इमरान रियाज खान ने बहुत बुरा जर्नलिज्म किया, इसका मतलब ये नहीं था कि उनके साथ वो होना चाहिए था जो हो, लेकिन फॉर द मासेस मे बी ही इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इट डजेंट मैटर व्हाट इज जर्नलिज्म वाज, इट डजेंट मैटर व्हाट इज हिस्ट्री वाज। इमरान खान के टाइम में जिन जर्नलिस्ट को हटाया गया, अब सैयद तलत हुसैन, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पहले उन्होंने अच्छा काम किया था, हाल ही में वो कुछ ऐसे शोज़ कर रहे हैं जिसमें डिसएग्री करता हूँ, जिससे मुझे ताज्जुब होता है। तो आप अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट से दूर थे, कभी इस्टेब्लिशमेंट के पास थे, तो मे बी इन सर्टन सर्कल्स पीपल नो कि अच्छा इस आदमी ने प्रिंसिपल स्टांस हमेशा लिया था तो इसकी रिस्पेक्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ द वाइडर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ द वाइडर मासेस, देयर परसेप्शंस मे नॉट अलाइन विथ द परसेप्शंस ऑफ पीपल हु नो मोर और आर मोर एजुकेटेड।
देखिए फिर तो इन एनी केस देन यू कांट मेक अ जजमेंट ऑन एनी बडी, राइट? आई मीन आई थिंक दैट इन एनी प्रोफेशन जो आपके अपने कॉलीग्स होते हैं, यू नो मोर अबाउट देम देन द रियल मैसेज। दैट्स अनदर डिफरेंट थिंग कि हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं तो पब्लिक फिगर्स की भी एक राय पाई जाती है। मगर जहाँ तक इमरान रियाज का ताल्लुक है तो देखिए उसके साथ ज़्यादती तो हुई है, तो सिंपथी भी उसके साथ होगी। इमरान खान साहब के साथ भी ज़्यादती अब हो रही है तो सिंपथी भी उसके साथ होगी। और पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि चाहे वो सहाफ़ी हो चाहे वो सियासतदान हो, अगर किसी के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादती की है तो सिंपथी वोट जो है वो उसको मिलता ज़रूर है। दैट इज़ बीन आर हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें। और ये भी एक सोच है लोगों के अंदर कि जी यहाँ पे तो हर किसी को इन्होंने गद्दार कहा, यहाँ पे तो हर किसी को, और जो लोग गद्दार जिनको वो कहा गया वो आज के हीरोज़ हैं। बादशाह खान साहब हीरो नहीं हैं यहाँ के, आप किसी से भी जाके पूछ लें तो बादशाह खान की तो बड़ी रिस्पेक्ट है। माई ओन मदर आसमा जहांगीर कितनी दफ़ा उनको गद्दार कहा, टुडे एवरीबडी अग्रीज दैट शी वॉज़ वन ऑफ द हीरोज़ ऑफ दिस कंट्री। तो इस मुल्क में जो जो गद्दार जिसको कहा गया वो तो हीरो था इस मुल्क का, तो फिर लोग भी उसको उसी से एसोसिएट करते हैं कि जी ये हमेशा से गलत है और ये आज भी गलत है।
इट्स ऑल्सो रिलेटिव हो जाता है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, पूरी मुल्क की सिंपति थी, अब मीनार पाकिस्तान में जलसा हो रहा है, मीनार पाकिस्तान वो अज्यूम्ड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो नॉट फॉर एवर। यस इन सम केसेस पीपल हु बीन प्रिंसिपल्ड, यस, बट अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियंस इधर उधर भी तो होते रहते हैं।
देखिए एक बात मैं आपको कहूँ कि इंडियन पॉलिटिशियंस जब हमारे मुल्क में आए, एक कॉन्फ्रेंस थी और उसके ऊपर एक इंडियन पॉलिटिशियन ने मुझे कहा कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं ना दे आर वेरी ब्रेव। मैं बड़ी हैरान हुई, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं उन्होंने कहा। मैंने कहा वो कैसे? तो उनका देखें जी यहाँ पे धमाके होते हैं, उनकी रैलीज़ के ऊपर होते हैं, वो फिर भी निकलते हैं, फिर भी आते हैं। यहाँ पे नैब उनके पीछे पड़ जाती है, करप्शन चार्जेस आप लोग लगाते हैं, बाद में प्रूव करना है बैठ जाते हैं, प्रूव होते भी नहीं हैं, वो जेल भी जाते हैं, वो फिर से इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। आप उनको जुला वतन भी कर देते हैं, उनको मुल्क में भी नहीं आने देते, उनकी प्रॉपर्टियाँ भी जब्त कर देते हैं, ख़ानदानों को भी जेल में डाल लेते हैं, वो फिर से आ जाते हैं। आप यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करें ना दिल्ली के अंदर, मैं देखता हूँ कि कितने सियासतदान वापस आके जो है यहाँ पर जलसा करेंगे। तो देखिए लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। Look at other countries like Egypt, look at Afghanistan, look at countries जहाँ पे सियासत ख़त्म हो गई, वहाँ पे structures कैसे थे और यहाँ पे structures कैसे हैं। यहाँ पे हमारे ऐसे structure हैं जहाँ पे आप politician को allow ही नहीं करते, आपने एक narrative बना दिया कि वो गंदा है, हालांकि आप अललान यहाँ पे property का काम करते हैं और लेते हैं यहाँ पे property, मगर चोर जो सबसे बड़ा है वो सियासतदान है। न्यूक्लियर proliferation की सबसे बड़ी जो चोरी थी वो किसने की? यहाँ पे लैंड माफिया जो था वो कौन है? तो आप जो इतना ज़्यादा टैक्स खाते हैं, हमारा वो बजट खाते हैं, उसके रिकॉर्ड्स तक तो आप देते नहीं हैं। आपका पेंशन जो है वो किससे आती है? ये तो थिंग्स आर नॉट इवन ऑन द बुक, बट एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट कि ये करप्शन जो है हमें, ये हलाल है। तो फिर उनकी करप्शन कैसे हराम हो गई? आप एक बात करें ना, हिपोक्रिट्स तो ना बने। तो फिर बात यह है कि बात फिर करप्शन की नहीं है, बात यह है कि करप्शन कर कौन रहा है। अगर ये सियासतदान कर रहा है फाड़ लो, तो अगर जनरल कर रहा है तो उधर देख लो, जो कि हमारी गिच्ची पकड़ लेगा। ये तो कोई बात ना हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है आपको इसको अलग रखना होगा, और आपको अपने सियासतदानों को इतना बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता सियासत ख़त्म हो जाए तो हमारा वो हाल होगा जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हो रहा है, और उस चीज़ से डरें। हमारा वो हाल होगा जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, उस चीज़ से डरें। जिस मुल्क के अंदर सियासी पार्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, जिस मुल्क के अंदर लॉयर्स बॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं, जिस मुल्क के अंदर सहाफ़ी ख़त्म हो जाते हैं, उस मुल्क का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर एनार्की आ जाती है। सो हमें चीज़ों को इकट्ठे करके, जो जैसे भी हैं हमारे सियासतदान बहुत बुरे हैं, मैं मानती हूँ, देर इज़ मच टू बी डिज़ायर्ड, मगर हैं तो सही। हम उस सांचे को तो मान रहे हैं ना, जिस सांचे के अंदर हमने गोल केक बनना है या स्क्वायर केक बनना है, मान तो रहे हैं उसको। तो फिर दैट आई थिंक वी हैव टू कीप इन माइंड।
आपने जो बात की अभी, ये क्यों नहीं हर रात मेन स्ट्रीम टीवी पे होती है, और मेन स्ट्रीम टीवी पे कामरान खान क्यों आ रहे हैं?
क्या जी?
मेन स्ट्रीम टीवी पे तो कामरान खान आते हैं ना, कि आप मिलिट्री को तनकीद कर, वो सियासतदान को भी तो देखें। तो जब बात ही नहीं हो सकती, द रीज़न आई थिंक लोगों का भी, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स पॉडकास्ट, जब ये बात ही नहीं हो सकती, अच्छा बजट में डिफेंस का कितना है, कितना होना चाहिए, यू नो इट्स जस्ट अ नॉन स्टार्टर कि पाकिस्तान की सालमियत की ज़रूरी, ठीक है आ जाएँ ज़रा डिस्कस कर लें क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, कैसे बंगालियाँ हैं बोले, अच्छा जी नॉन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, नॉन असेंशियल, ये डिस्कशन जब हो ही नहीं सकते, और डिस्कशन ही सिर्फ ये हो रहे हैं कि एक पीटीआई वाला बैठा हुआ है, एक पीएमएलएन वाला बैठा हुआ है, एक पीपीपी वाला बैठा हुआ है, और बोले पाकिस्तान की बर्बादी की वजह रोटी मिल रही नहीं है क्योंकि तू करप्ट है, नहीं तू करप्ट है, तू करप्ट है, और घर जाके सो जाओ। तो आपने तो आवाम का भी टाइम वेस्ट किया है।
आई थिंक कि जब IMF की बात हुई थी तो ये बात ज़रूर आई थी, और कैसर बंगाली साहब काफ़ी मेन स्ट्रीम चैनल्स पर आए थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे, मेरे अपने शो पर आए थे, और उन्होंने ये बात बोली थी कि आप अपना नॉन कम्बैटेंट बजट जो है इसको कम करें, ये बात उन्होंने कही थी। सो ये नहीं है कि ये बात कही नहीं जा रही, मगर देखिए ये बात अब पार्लियामेंट में भी तो होनी चाहिए। पार्लियामेंट कहेगा तो हम रिपोर्ट करेंगे ना, हम पहले ही वो कहते हैं ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह तो नहीं हो सकता।
पार्लियामेंट वो तो दुनिया भर में जहाँ ब्रेकिंग न्यूज होती है या जहाँ कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आती है, द पार्लियामेंट फॉलोज द न्यूज।
That is correct. Investigative report is a good point. मगर देखें investigative report जो है वो आजकल के माहौल में अगर आप करेंगे तो चैनल ही बंद हो जाएंगे, जो हालात बने हुए हैं ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। बट टू से कि इस पर कोई बात नहीं होती, दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज इस पर बात हुई है। ख़ास तौर पर जब बजट्स की बात होती है तो ये बात लोग उठाते हैं, पूरा प्रोग्राम ना हुआ हो मगर बात ज़रूर हुई है। फिर आप ये भी देखें कि इवन इन टर्म्स ऑफ लैंड माफिया, तो मलिक रियाज के ऊपर स्टोरीज हुई हैं, डॉन ने फ्रंट पेज दिया है उसको।
सिर्फ डॉन ने किया है, रिसेंटली मलिक रियाज का नाम आना शुरू हो गया है, बिकॉज अपेरेंटली फॉलिंग आउट हो गई है। पहले तो जब बहरिया टाउन में एक स्टेज गिर गया था वो न्यूज़ नहीं आ सकी थी, मलिक रियाज की तो दूर की बात। इवन वेन इमरान खान पब्लिक एनमी नंबर वन थे, एंड वन वुड अज्यूम के चले राइटफुली रॉन्गफुली आइदर वे लोग समझते हैं, जियो एंटी इमरान खान है, जियो तक अलकादिर केस एक निजी लैंड ओनर के साथ इमरान, जियो तक ने मलिक रियाज का नाम नहीं लिया।
आई थिंक ऑल्सो बिकॉज ही इज एन एडवर्टाइजर ना, तो ये भी है। और ये तो आप अगर देखें तो आई एग्री इट्स नॉट करेक्ट, बट टू से कि सिर्फ ये पाकिस्तान में होता है, हरगिज़ नहीं। मुझे पता है कि इंडिया में भी होता है, आई नो दैट बिकॉज आई वर्क इन इंडियन मीडिया, ये चीज़ अमरीका में भी होती है। सो देर इज दैट, आई मीन देर आर सेंसरशिप दैट आर ड्रिवन बाय कमर्शियल इंटरेस्ट, एक और चीज़ है। My issue is कि ये that is the beast and there are ways of correcting that industry. But my problem is not with that beast. My problem is with the state of Pakistan, who has yet to decide under Article 19 what are friendly countries. वहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि आप judiciary के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप आर्म फोर्सेस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप फ्रेंडली कंट्रीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकते। जितने भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स आए उन सबसे मैंने पूछा भी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है क्या, नन ऑफ देम हैव बीन एबल टू डिफाइन इट। तो आप जो मर्जी करते रहें, वेग लॉज बना के हम किसी को भी आप सेडिशन पे पकड़ते रहें, जो आप साफियों को करते रहें। सिमिलरली जजेस एंड जनरल, दे आर एट द सेंटर ऑफ एनी पोलिटिकल स्कैंडल और एनी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, एवरीबडी नोज दैट। हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट देम एंड डू जर्नलिज्म? ये भी एक मेरा मसला है। तो मेरा मसला ये है कि आपका जो आर्टिकल 19 है वो इतना वेग है दैट इट अलाउज फॉर लकूनाज इन द लॉ, और जिस दैट इज़ दी अम्ब्रेला लॉ, और उससे नीचे आपका पीका भी आया जिससे हमें इख्तलाफ है, और भी आपके जो कवानीन है वो उससे बने, और वो इतने ही वेग थे, और उसके अंदर आप सारे जर्नलिस्ट को धर सकते हैं कि जी किसी के ऊपर आप सेडिशन लगा सकते हैं, किसी के ऊपर आप कुछ लगा सकते हैं। आर इशू इज़ विद द मेन लॉ कि इसको अमेंड करना चाहिए, और इसके अंदर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कंडीशंस नहीं लगा सकते जिस तरह बाकी दुनिया में है। आप उस तरह एक लॉ बनाएं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, क्यों आप उसके ऊपर कंडीशंस लगाते
हैं? आई एग्री विद यू। अगर कोई डेफेमेशन को बहाना बनाया जाता है, डेफेमेशन लॉ है, हमारे पाकिस्तानी चैनल हैं जिन्होंने यूके में झूठ बोला है और फिर फाइन्स दिए हैं, वो बना लें, वो इंडिपेंडेंटली दे विल बी डेल्ट विद। बट जो सिचुएशन आप पेंट करिए हो, ठीक है फेयर, 99 में से एक बात हो सकती है जो इम्पोर्टेंट बात हो, आई वुड सजेस्ट कि पूरे पूरे शोज होने चाहिए कि बजट गया है, ये पैसे इधर जा रहे हैं, घंटे दो घंटे उसको डेडिकेट होने चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को, एक्सप्लेनर्स होने चाहिए। आइदर वे
दैट विल हैपन वंस द स्टेट गेट्स आउट ऑफ आवर बिजनेस
एज द सिचुएशन इज। कि चैनल पे आएगा कौन, उसके नाम आ रहे हैं, लोग जिनको प्राइम टाइम शोज मिल रहे हैं उनमें से कई लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नवाजा गया है या अपस्टार्ट्स हैं। हमने पिछले दौर में ऐसा भी देखा, 18-19 साल के बच्चे GHQ में चले गए, अपने टीवी पे आ गए, बंदा सोचे ये कैसे हुआ। तो क्यों लोग मेन स्ट्रीम टीवी देखें, क्यों देखें? वो
तो उनकी चॉइस है, वो देखें या ना देखें, मगर ये कह देना कि जी मेन स्ट्रीम टीवी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बिकॉज देखिए, आप सोशल मीडिया पे आधा टाइम हम यही देखते रहते हैं कि क्या फेक न्यूज़ है क्या रियल है। हमारा आधा दिन एक्चुअली इसी में गुजर जाता है ये डिटरमिन करने के लिए कि ये फेक न्यूज़ है या ये रियल न्यूज़ है। तो सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ फेक न्यूज़, आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट्स फुल ऑफ फेक न्यूज़। एटलीस्ट ऑन मेन स्ट्रीम अगर आप कोई गलती करेंगे उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, कई केसेज में नहीं भी भुगतते मगर बहुत सारे केसेस में आपको वो खमियाजा भुगतना भी पड़ता है, या आपके ऊपर केस हो जाएगा, या आपके ऊपर तंकीद होगी, या आपको कोई जो है आपको चैलेंज करेगा। तो देर इज़ स्टिल सम फिल्टर्स लेट्स से इन मेन स्ट्रीम। प्लस लुक एट द, आई मीन इफ़ यू लुक एट सम ऑफ द चैनल्स, लुक एट देयर टेंटिकल्स। मैं बैठी हुई हूँ अगर इस्लामाबाद, मुझे ये भी पता है कि मेरा रिपोर्टर तुर्बत से मुझे क्या बता रहा है, मेरा रिपोर्टर तिमरगढ़ा से मुझे क्या बता रहा है, मेरा रिपोर्टर कराची से क्या बता रहा है। आप उस इंडस्ट्री को तो फिर नहीं कह सकते ना कि जी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके टेंटिकल्स कहाँ कहाँ हैं। लुक एट द वे द इंफॉर्मेशन कम्स टू यू, आई मीन दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी सोशल मीडिया नेटवर्क, नो मैटर हाउ बिग इट इज़, कैन नॉट गिव यू, बिकॉज द नंबर्स डोंट एड अप। राइट नाउ द ओनली थिंग दैट वी रियली डू हैव इज़ मेन स्ट्रीम, एंड आई थिंक दैट इट इन वी सीन ऑल्सो गुड डेज। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर दैट जब अफगानिस्तान के साथ हमने कुछ शोज़ किए थे, टोलो न्यूज़ उस वक्त था, मैं एक्सप्रेस में थी, वी डिड लाइव ब्रॉडकास्ट विद यू नो 100 ऑडियंस देयर, एंड इट वॉज़ अ पॉलिटिशियंस टॉकिंग टू पॉलिटिशियंस और ट्रेडर्स टॉकिंग टू ट्रेडर्स विद दोज ऑडियंस। सो मेन स्ट्रीम हैज़ डन इन द पास्ट सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, बट दैट इज़ ओनली कम आउट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। अभी हालात ख़राब हैं मगर पाकिस्तान भी दायरे का सफ़र है, मुझे यकीन है कि ये सफ़र भी गुजर जाएगा और कोई और सफ़र शुरू होगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। मगर तब तक टू यू नो टू रिमेन टू काइंड ऑफ डिफेंड योर स्पेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ तक हम कर सकते हैं।
आई एग्री विथ यू कि एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। अगर नवाज शरीफ का जलसा हो रहा है, हो सकता है कि जियो के 600,000 लोग हैं, ARY के 600 लोग हैं, बट ये नहीं हो सकता कि जलसा नहीं हो रहा और कोई रिपोर्ट करते कि जलसा हो रहा है। एक बेसिक अपार्ट फ्रॉम स्पिन फैक्ट का उसका बेसिस होना ज़रूरी है।
एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ ग्रेट जो मेन स्ट्रीम में है, सोशल मीडिया में उस तरह की आपके पास वो ही नहीं है, पेनिट्रेशन ही नहीं।
बट इन टर्म्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन शुड ड्राइव एंड डिटर्मिन व्हाट द न्यूज़ विल बी. ठीक है वो फेक ना हो वो सच हो, लेकिन अगर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में दो प्रोविंसेस अंडर वाटर हैं, लेकिन 45 मिनट के शो के 43 मिनट्स तोशाखाना पे आएंगे, इमरान खान का जो मोटरकेड है उसकी लाइव कवरेज आएगी, और फिर आखिरी के दो मिनट में बोल देंगे कि अच्छा यार आधा पाकिस्तान भी अंडर वाटर है. सो यू आर ऑल्सो टेलिंग पीपल व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड दैट मे नॉट एक्चुअली बी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट मे बी ड्रिवन बाय इंटरेस्ट और प्रेशर.
I agree with you to some extent, but I also think that you should consider this, ke over the years, let's say when I began in 2004 to now 2023, the budgets for the newsroom have been cut to a great degree. While anchors are being paid more and more, agar aap reporters ko dekhein, pehle ye humare paas budget hota tha to travel and to go to those areas jahan pe koi na koi saniya hua hota tha, jis tarah earthquake ke andar बजट्स मिलते थे कि जी आप जाएं और उसको कवर करें. सिमिलरली इन द फ्लड एरियाज वी ट्राइड टू कवर ऑल. आई वांटेड टू आल्सो गो टू सिंध, बट आई ओनली हैड द बजट टू गो टू बलूचिस्तान, एंड एट दैट टाइम आई चोज बलूचिस्तान बिकॉज बिल्कुल अंडर रिप्रेजेंटेड था इन द मेनस्ट्रीम.
आपको जाने की क्या जरूरत है? अगर आपके रिपोर्टर्स और टेंटिकल्स हैं तो वो दें लाइव, आप उनसे बात करें.
नहीं, इसलिए बिकॉज आई थिंक जाना ज़रूरी होता है. मैं समझती हूँ एक सहाफ़ी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक रिपोर्टर की होती है, एंड आई हैव बीन अ रिपोर्टर नाउ फॉर 15 ईयर्स. तो till you do not go to those areas you cannot report correctly, so you have to go to the field. I think it's very important to go into the field. So wo budgets bhi jo hain wo sukhad gaye hain. Agar aapka reporter bhi jata hai let's say, to wo travel to karega na, usko petrol ke paise to dene honge, baki sari cheeze to deni hongi. Aur jo reporting ki as such budgets including aapka jo editor hai, you know, in most newsrooms the editor now doesn't exist. Aapka ek input desk hai, an output desk hai, editor gayab ho gaya. सो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत तकलीफ दे इसलिए हैं कि जो जर्नलिज्म मैंने अगर जर्नलिज्म शुरू की तो मैंने इसलिए शुरू की थी बिकॉज आई वांटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ पीपल, ऑफ रेगुलर पीपल. आई डिडंट केयर व्हाट शेख रशीद सेड और व्हाट फलाना ढमकाना सेड. आई वांटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ पीपल, एंड दैट एक्सेस हैज़ गॉन बिकॉज नाउ द आइडिया इज इट्स मच ईजियर फॉर यू एंड मी टू स्टार्ट टॉकिंग. पीछे आप एक प्लैक कार्ड लगा लें या स्टैंडी लगा लें और आप शो कर लें, इट्स चीपर एंड इट फिल्स अप योर वन आवर. मगर फॉर अ रिपोर्टर टू गो एंड मेक दैट रिपोर्ट जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में होता है, दैट टेक्स मनी. सो आई थिंक देर इज़ ऑल्सो लेस ऑफ अ वैल्यू ऑफ दैट काइंड ऑफ जर्नलिज्म, स्पेशली विद द न्यू कमर्स दैट आर कमिंग इन, जो नया सेठ आ रहा है, क्योंकि उसने वो चीज़ पहले देखी भी नहीं है ना, उसको वो एक्सपीरियंस से भी नहीं गुजरा. सो आई थिंक लुक एट द वे द इंडस्ट्री इज बींग स्ट्रक्चर्ड, द होल we are swimming against the wave if you look at it.
Do you feel ke ab kyunki wo jo ek editorial policy hoti hai, ek editor hota hai jiska decision hota hai, ek classic newsroom hota hai ki acha headline kya jayegi, second page pe kya jayega, it's similar na, lead story kya hogi, second story kya hogi, to wo aapki ek duniya ki samajh ho, history ho, wo element aapne jab hata diya hai to sort of the tail is wagging the dog in Pakistan where you're like acha social media pe subah kya viral hua hai wo raat ke show pe aayega. Is tarah ho raha hai.
आई थिंक न्यूज़ कलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी न्यूज़ रूम के लिए. जो अगर सही तरीके से नहीं होगी तो आप अपनी स्टोरीज़ को कैसे देखेंगे कि क्या आना है क्या नहीं आना, और उसके लिए यू नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन. यू कैन नॉट हैव अ न्यू कमर और यू कैन नॉट हैव अ सेठ हु एक्चुअली यू नो डज अ सीमेंट बिजनेस और समथिंग एल्स इन द मॉर्निंग एंड डज दिस इन द आफ्टरनून. यू नीड टू हैव अ डेडिकेटेड पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस, हु हैज़ बीन अ रिपोर्टर, हु हैज़ गॉटन हिज शूज डर्टी टू मेक दैट डिसीजन. बिकॉज जब तक आप ऑन द ग्राउंड नहीं जाते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं होता. अगर मुझे कोई मेरा रिपोर्टर कह रहा होता है कि ये मेरे मसाइल आ रहे हैं, मुझे समझ में आ जाती है बिकॉज आई ऑलरेडी बिन देयर. सिमिलरली व्हेन आई वाज रिपोर्टिंग टू एडिटर्स, दोज एडिटर्स हु हैड बीन रिपोर्टर्स, इट्स ईजियर टू रिपोर्ट टू देम, उनको समझ में आ जाती है. सो आई थिंक द बिजनेस इन इटसेल्फ इज टेकिंग अ डिफरेंट शेप एंड फॉर्म. व्हेन अ बिजनेस इज बीइंग रन, आई मीन लुक एट द न्यूज़ इज अ न्यूज़ बिजनेस, वट एवर यू मे से अबाउट इट, इट्स अ बिजनेस. उसके अंदर जब आप इट्स लाइक सेइंग कि जो बंदा गाड़ी बनाता है आप उसे अब न्यूज़ करवा रहे हैं, ये तो नहीं मुमकिन. फिर ये तो इस तरह तो नहीं हो सकता. आप न्यूज़ वाले को गाड़ी बनाने वाले पे तो नहीं लगाएंगे. सो आप देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस. आई थिंक दैट इट हैज़ नॉट बीन गिवन दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस, दैट ये भी एक प्रोफेशन है, नॉट रिकग्नाइज एज दैट, विच इज़ वाई वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ कम्प्लीट यू नो खराब हो गया.
क्या लगता है एज अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट न्यूज़ को पब्लिक गुड की तरह देखना चाहिए एंड रिलाइंग इट ऑन द कैपिटलिस्ट सिस्टम या सेट सिस्टम या एड रेवेन्यू सिस्टम, वो फेल ही होगा. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट भी अगर आप पढ़ें नोम चोम्स की, कि वो जो एडवर्टाइजमेंट रिलायंट मॉडल है वो हमेशा उसी तरफ जाएगा जो चीज़ अच्छा रेटिंग्स क्या आ रही हैं, वायरल क्या हो रहा है, रादर देन व्हाट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. तो क्या एज अ पब्लिक पॉलिसी स्टैंड पॉइंट न्यूज़ को पब्लिक गुड समझ के स्टेट का कोई इंटरवेंशन होनी चाहिए, कोई पेट्रनेज होनी चाहिए जिससे एक्चुअल न्यूज़ प्रोड्यूस हो?
मेरा ख्याल स्टेट तो हमारे से बहुत ही दूर है. हम तो चाहते हैं कि स्टेट किसी तरह कहीं भी इंटरवीन ना हो, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है. मगर ये आइडिया दैट जर्नलिज्म when done for the right people, for the people that are disenfranchised or marginalized, will be bad or boring journalism and will not get the numbers. There is a channel who has proved otherwise. Look at NDTV, the Jessica Lal case tha, wo NDTV ne pick up kiya tha. And as a result of that case, not only NDTV increased its eyeballs, it's increased its revenue. And it also, demanded justice for Jessica. So, मेरा ख्याल है इट्स अबाउट क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी ओनली द पीपल हु हैव बीन इन द बिजनेस हु हैव बीन एक्सपीरियंस कैन डू इट फॉर यू. इट कांट बी समबडी हु इज डूइंग इट एज अ साइड जॉब और इज यूजिंग द न्यूज रूम फॉर देयर ओन पर्पसेस. इट हैज़ टू बी समबडी हु हैज अ पैशन फॉर द प्रोफेशन एंड हैज़ द एक्सपीरियंस टू बैक इट अप. सो इफ यू लुक एट NDTV, इट वॉज 80% वुमेन. हमें कहा जाता था दैट्स वाई आई रियली एंजॉयड वर्किंग देयर बिकॉज दे यूज टू से 80% हमारी औरतें होंगी वर्कफोर्स में एंड वी विल टेक अप इशूज ऑफ वुमेन. सो उन्होंने इतनी क्रिएटिविटी के साथ जर्नलिज्म की विच वॉज ऑल्सो इफ यू लुक एट द वर्क इट वॉज वेरी मच अ ह्यूमन राइट्स ड्रिवन एजेंडा बट दे डिड इट सो ब्यूटिफुली दैट एवरीबडी वॉन्टेड टू सी इट. मुझे आज भी याद है जो द बिगेस्ट प्रिजनर एक्सचेंज दैट हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. I think it was 2003, 2004, 2005, I think. And they got people from beforehand, families from beforehand who were expecting their child to return. And they started building up, ki ji wahan pe Ashfaq jo hai, wo kitne saalon se reh raha hai. Phir Ashfaq ki maa khana banati hai, jab wo border pe jaati to Ashfaq doesn't cross the border. So that was a story that was very much of the people by, very much for the people. A story of regular people. It was done so beautifully. So you can do things very beautifully in a very creative way without actually ditching the entire commercial model also.
Aap yahan se NDTV ke liye kaam kar rahi thi ya aap India mein thi?
Nahi, idhar se. I was a country correspondent for many years.
What did you learn working at NDTV? Like, what are some lessons that have stayed with you?
I think how to tell the... It was almost like making a film, short films. All our stories were like short films. We did a series on the 1971 war where we got people who had fought against each other in the 1971 war. They spoke, my counterpart spoke to them there, I spoke to them here. And we made them meet through the video, Similarly with the earthquake, I remember jab hua tha 2005 mein, I was up there and I was doing stories. तो उस वक्त जो फ़ोन लाइंस थी वो सारी डाउन हो गई थी बिकॉज वहाँ पे आपको रेगुलर फ़ोन लिंक्स या मोबाइल फ़ोन लिंक्स नहीं, इजाज़त नहीं थी. तो जो पाकिस्तान आर्मी की फ़ोन लाइंस थी वो ही थी उस वक्त एंड इंडिया के अंदर भी सिमिलरली वो ही था. सो पीपल डिड नॉट इवन नो कि भाई उनका जो बंदा आगे है या उनका जो रिश्तेदार है वो ज़िंदा भी है कि नहीं है. और लोगों ने बहुत ये कहा कि जी अगर हमारी फ़ोन लाइंस चल रही होती तो हमें कोई बंदा मलबे से निकाल लेता, हमें ढूंढ लेता. उस वक्त बरखा दत्त का वी द पीपल होता था. मैंने इस साइड से मुजफ्फराबाद से होस्ट किया, उन्होंने श्रीनगर से होस्ट किया. एंड व्हेन वी वेंट लाइव तो दोनों साइडों से फैमिलीज आई और उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है वो उस गली में रहता था, वो जिंदा है कि मर गया. और फिर वो हम उस बेटे को लाते थे टू शो कि क्या हुआ. वो जो शो था वो मनमोहन सिंह ने देखा एंड यूनिलैटरली ही लिफ्टेड द बैन ऑन मोबाइल सेल फोन कंपनीज टू श्रीनगर. And then, Musharraf had to follow suit. Now, this was not a high-powered show, but it was an emotional show. It touched people. It also received an award. But what it did was that it eventually forced the government to do something good for its own people. So I realized that kind of journalism was something that I wanted to do in my life, because that is real impactful journalism.
मैं बहुत बातें करनी थी लेकिन इतने बैक टू बैक मैंने पॉडकास्ट स्केड्यूल कर लिए हैं. 10 मिनट है हमारे पास, 10-20 सेकंड के सारे जवाब होंगे. How does she feel about inviting Nawaz Sharif in the Asma Jahangir conference?
I think that I would invite everybody who is a politician to the Asma Jahangir conference. I would not invite, let's say, a general or a dictator, but I would invite politicians, especially the ones who are in opposition at the time.
How can an ordinary citizen deal with fake news and its repercussions in society? What power do we have?
I think you need to check your facts. You need to constantly go and check your facts, and you have to be careful not to believe everything.
After failure of mainstream media, ISPR under General Asim and General Ghafoor decided to launch YouTubers. How much YouTubers are going to hold their followers, as people will soon lose the taste for YouTubers as well when they realize that YouTubers don't aim at spreading any serious message?
झूठ के पाँव नहीं होते।
एंटरटेनमेंट के बहुत पाँव होते हैं अगर आप एंटरटेनिंग करके न्यूज़ को बनाते रहें।
मैं समझती हूँ हमारे व्यूअर्स बेवकूफ़ नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को सब पता चल जाता है। थोड़ी देर तक आपका झूठ चल सकता है मगर इवेंचुअली दम तोड़ देता है। और लोग जो हैं, अगर आपने लंबे रेस का घोड़ा है तो फिर आप ये शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। पाकिस्तान में आप बहुत जल्दी जो है आप एक्सपोज हो जाते हैं।
आई थिंक अमेरिका में अगर आप एलेक्स जोन्स को देखें, अब तक चल रहा है, केस हो चुके हैं, केसेस में मिलियंस डॉलर्स दे चुका है, अब तक उसकी एक फॉलोइंग है।
मुझे पाकिस्तान में एक बंदा बताएं जो अलाइंड था विद द एस्टैब्लिशमेंट और आज जो है उसकी क्रेडिबिलिटी वहीं की वहीं है।
मैं बता नहीं सकता ना कि कौन अलाइंड था कौन नहीं था, बट लाइक लेट्स से अरशद शरीफ वाज अलाइंड विद द एस्टैब्लिशमेंट। अरशद शरीफ इज अ हीरो फॉर जर्नलिज्म एंड अगेन द फैक्ट दैट ही वाज किल्ड इज ट्रेजिक, इट्स अनफॉर्चुनेट।
I think that's a different case because he's no longer with us. So, you know, and he was killed. But if I'm talking about living journalists...
Aap mujhe journalist ke naam bataye, main aapko batata hoon ki wo establishment se hain ya nahi. Isko reverse kar le.
Yes, but I do think that credibility doesn't come easy. And the trust of people doesn't come easy.
Have the top journalists of Pakistan not at some point or the other been aligned with the establishment?
No.
Really?
To be aligned with the establishment is different. To suffer them is different. I think people have suffered them and people have survived them, but have people been their spokespersons? Have people aided and abetted? I think that's a very different question.
I think degrees ki baat hai ki wo alignment kis tarah se hoti hai. Hamare jo bhi top ke log hain wo kahin na kahin alignment messaging idhar udhar give and take, but that's everybody's
if
personal
they were
decision.
Actually, let me ask you this question. If they were given a choice, would they want the state interfering in media or not? If they were all given a choice.
अब ये तो उन पे डिपेंड करता है।
नहीं, but what do you believe?
अगर कुछ लोग पैसे ले रहे हैं, they would still want the money to coming in. Why would they want the money to stop? Or if some people have been put into positions of leadership,
I think
by virtue of their.
Yes, but I can tell you for sure that जिन्होंने उनका ये चेहरा देखा, उन्होंने उनका बड़ा सख्त चेहरा भी देखा है. To my mind, I think that I don't think there will be any journalist who will say कि नहीं इनकी interference होनी चाहिए. मीडिया के अंदर मैं नहीं समझ।
जर्नलिस्ट भी कोई स्टैटिक इंसान तो नहीं है। अगर हम कहते हैं चलें हामिद मीर ने सबक सीख लिया, वो अब कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होंगे, तो कल को कोई और हामिद मीर आ जाएगा, परसों को कोई और हामिद मीर आ जाएगा। सो इफ़ सम पीपल हु हैव थॉट के मज़े ही मज़े हैं, करोड़ी करोड़ हैं, व्यूज ही व्यूज हैं, और वो रुक गए अब और उन्हें सबक सीख लिया, कल को कोई और लोग आ जाएंगे जो सबक सीखने के लिए।
मगर सीखेंगे तो सही ना,
तो वो सिलसिला तो चलता रहेगा। रीजंस फॉर एम्पथाइजिंग विद दोज हु हैव हु ऑलवेज डिस्ग्रेस्ड हर मदर।
Empathizing with them,
haan.
Who disgraced my mother.
Hmm.
I don't think they mattered to her. I don't think they mattered to me.
When is her next trip to Goa? Khair, next trip to aapko bhi nahi pata. Kaisi thi last trip to Goa?
Very interesting. Very interesting. And there's a lot of resentment now. I think wo state ka narrative jo hai, it has been bought by the media, which is why I say that our media is in some ways far more progressive, far more resilient against what the state narrative is. And our media does not blindly follow the state narrative, neither on foreign policy nor on domestic policy.
So even Goa mein jaake journalist se baate karkar, you had a sense ki ye jo godi media jisko kehte hain wahan par, ye prevalent or popular and across the board hai.
Dekhiye, Barkha Dutt is a very big name in Indian journalism, but she can't find a job in Modi's India. सिमिलरली मैं आपको और बहुत सारे नाम देख सकती हूँ और वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट हु कैनॉट फाइंड अ जॉब इन मेन स्ट्रीम बिकॉज ऑफ यू नो प्राइम मिनिस्टर मोदी. सो आई थिंक दैट ओवर देयर द मीडिया हैज़ बीन ईदर कमर्शियल इंटरेस्ट को सामने रख के, इट हैज़ बीन bought by him, as in the hostile takeover of NDTV is a prime example. And, you know, it's not easy to survive there as a journalist. I've seen it myself.
Do you feel it on the streets? Goa mein agar aapke people interactions, unme koi farak pada ya wo to koi farak
nahi? Bilkul bhi nahi. In fact, but I do believe ke Mumbai attacks ke baad, there was a shift in people's thinking. Pehle jab aap India jaate the, to wo kehte the, ji Lahore di ladki, to bade wo excited hote the. Ke koi kehta tha, oh, saada ghar itthe hunda si, tuhanu yaad hai, tuhanu pata hai. मगर अब जब हम जाते हैं तो यंगर जनरेशन लुक्स एट पाकिस्तान एज जस्ट अ कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स टेररिज्म एंड दे हैव सीन दैट फ्रॉम देयर लिविंग रूम्स व्हेन द यू नो व्हेन द ताज होटल वाज सीज्ड एंड अदर रेलवे हुआ था एंड ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन पुट इनटू फिल्म्स इट हैज़ बीन नरेटेड देयर कोर्ट रूम्स हैव सीन द एविडेंस सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू स्वॉलो for the Indian population, I think. And I think the next generation, that romance that there was once with Pakistan, which the older generation had, because there was an affiliation with Pakistan, that is gone.
So, ye to behtar hota to nahi nazar aa raha?
Behtar hota, isliye mujhe nazar aata hai ke I do not believe, even when we went for the BRICS seminar, etc., and, you know, SCO, the Shanghai conference, I do not believe that with what we are facing today, whether it's climate change, whether it's earthquakes, whether it's terrorism, that we can handle it just by being within our borders. I think there's going to be a regional approach, even to the economy, even to trade. And if we want to walk with the rest of the world, it'll have to be as regions. It won't be ke ji Pakistan apna jhanda lehra ke aur akele chal raha hai kahin. We will have to have a regional approach to issues because those issues do not recognize borders.
Hopefully things look up. Hopefully hamari news better ho. Hopefully Pakistan India ke relationships better ho. Kafi logon ne bola ke aapke wasile se unki jo respect aapki walida ke liye wo aap tak communicate kiya jaye. To main individually to nahi kar sakta to ye. Collective respect aap.
Thank you very much.
Collective love respect. Thank you very much. Thank you for your time and thank you for listening. Take care. Bye.
Thank you.